ओम शांति। आज का टॉपिक है पुरानी मिट्टी के बर्तन, टूटे हुए बर्तन और मच्छर। ये जो टॉपिक है, लास्ट संडे की जो मुरली थी जिसमें जो 3 अप्रैल 1982 की रिवाइज मुरली चली थी, जिसमें बाबा ने कहा था कि लेने के लिए तो पूरा लेते हैं लेकिन छोड़ने के लिए पुराने बर्तन भी नहीं छोड़ते हैं, मिट्टी के बर्तन भी नहीं छोड़ते हैं। तो बाबा ने उसमें कहा कि भले आप मिट्टी के बर्तन रखो, बाप दादा को कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि जो बर्तन रखेगा वही, जिसके पास टूटे हुए बर्तन होंगे वहीं पे मच्छर पैदा होंगे, और जो मच्छर पैदा होंगे जहाँ पे होंगे वहीं उसी को परेशानी होगी। तो बाबा ने कहा था कि टूटे हुए बर्तन रखने से बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती है और फरिश्ता स्टेज नहीं बन पाती है, और इसका रिजल्ट ये है टूटे हुए बर्तन रखने का। फिर मच्छर पैदा होते हैं, तो फिर बाबा ने कहा कि काटेंगे किसको, जिसके यहाँ मच्छर पैदा हुए हैं वह उसी को काटेंगे। तो इसी के आधारित ये आज का टॉपिक है, पुराने मिट्टी के टूटे हुए बर्तन और मच्छर। तो मिट्टी के बर्तन वैसे तो शास्त्रों में बहुत शुभ माना गया है, भारतीय परंपराओं में, भारतीय संस्कृति में भी मिट्टी के बर्तनों का बहुत महत्व है। हमने देखा है कि पुराने जमाने में मिट्टी के बर्तनों में ही भोजन बनता था, तो वो मिट्टी के जो बर्तन थे वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते थे। अभी भी जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार सब कुछ कर रहे हैं वो यही बोल रहे हैं कि मिट्टी के बर्तन यूज करो, क्योंकि मिट्टी में वो सारे ही पोषक तत्व होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, क्योंकि शरीर भी मिट्टी से बना हुआ है, 5 तत्वों का बना हुआ है, तो उसके लिए जो आवश्यक तत्व है वो उसमें मिलते हैं, और जो भी भोजन हम उसमें मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं तो उसका जो पोषक तत्व है वो डबल हो जाते हैं, इसलिए मिट्टी के बर्तनों का बहुत महत्व है। क्वालिटी डाउन नहीं होती, मेंटेन रहती है, दोनों के मिल जाते हैं, मिट्टी के बर्तनों का भी मिलता है तो इसका भी मिलता है ना, इसलिए डबल हो जाते हैं। तो बात चल रही थी कि मिट्टी के बर्तनों में भोजन बनाते तो बहुत अच्छा होता है। वैसे भी देखते हैं अभी, जैसे अभी गर्मी का सीजन है, हम घड़े में पानी रखते हैं और फ्रिज का भी पानी होता है, तो फ्रिज का पानी भले कंपैरेटिवली बहुत अधिक ठंडा होता है लेकिन पीने के लिए मटके का पानी ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा टेस्टी भी होता है और उसकी ठंडक भी अच्छी लगती है ना। वैसे मिट्टी की सुगंध भी बहुत अच्छी लगती है, तो वैसे मिट्टी बहुत अच्छी है, लेकिन वो अगर उसके जो बर्तन है वो अगर टूटे हुए बर्तन अगर हम घर में रखेंगे तो क्या होता है, कूड़ा कचरा बढ़ जाता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं और अशुभ माना जाता है उसको, घर में नकारात्मकता फैलती है। वास्तु शास्त्र वाले हमेशा कहते हैं कि टूटी हुई कोई भी चीज घर में नहीं रखनी है, क्योंकि उससे नकारात्मकता आती है, घर में दरिद्रता आती है ना, गरीबी आ जाती है। तो मिट्टी के बर्तनों का महत्व है लेकिन टूटे हुए चीजें बिल्कुल नहीं रखनी होती है। तो पहले हम मिट्टी के प्रकार देखेंगे, जैसे भारत में मिट्टी के 8 प्रकार बताए हैं, लाल मिट्टी, काली मिट्टी जी, बता रहे वो नेक्स्ट है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, हल्की काली एवं दलदली मिट्टी, फिर होती क्षार युक्त मिट्टी, और एक होती है कांप मिट्टी, वो मुझे समझ में नहीं आया कांप मिट्टी क्या होता है, पढ़ा मैंने लेकिन समझ में नहीं आया नहीं, और एक होती है वनी मिट्टी, मतलब वन में जो होती है वो मिट्टी। तो हर एक की अपनी अपनी एक विशेषता होती है, और सबसे अच्छी होती काली मिट्टी, वैसे कुछ पीली मिट्टी मुल्तान में होती, बाकी यहाँ नहीं होती है। दोमट मिट्टी क्या होती है, मैं भारत की मिट्टी की बात कर रही हूँ, तो भारत में 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, बाकी विश्व में अलग अलग प्रकार, जैसे जैसे भौगोलिक जहाँ का वातावरण था उस प्रकार की वहाँ मिट्टी होती है। तो लाल मिट्टी को अगर हम देह के इसमें कंपेयर करें तो जैसे लाल मिट्टी जो है ना वो अहम का प्रतीक है, इसमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा होता है, और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने के कारण दूसरों को बहुत हीन मानते या कम मानते हैं, तो ये अहम भाव का प्रतीक है लाल मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी, काली मिट्टी जो मन को काला करती, तो ये जो मिट्टी है इसमें हम हमारे मन में दूसरों के प्रति नफरत की भावना, वैर भावना या घृणा की भावना होती है तो ये मन को बहुत काला कर देती है। तो इस मिट्टी के प्रभाव में रहेंगे तो हम इस प्रकार का हमारा ऐसा नेचर होता है। फिर तीसरा है रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी, रेती में क्या होता है, पानी मतलब जब तक सोख करना है सोख करते, बाकी निकल जाता है ना, उसमें रहता नहीं है। तो ऐसे ही रेतीली मिट्टी का स्वभाव जो होता है वो ऐसा है कि कोई कितना भी अच्छी चीजें बताए हमें, कुछ भी अच्छा सिखाए, लेकिन हम सीखते नहीं, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। वैसे तो पॉजिटिव वे में अगर देखा जाए तो ये बात अच्छी है कि कोई कुछ भी कहे हमें, लेकिन हम उसको अपने ऊपर असर न लाए या प्रभाव में न आए। लेकिन नेगेटिव बातें अपने मन में नहीं धारण करनी है, पॉजिटिव बातें हमें धारण करनी है। लेकिन वो भी नहीं करते, वो जैसे एकदम चिकने घड़े होते हैं, सब कुछ करने के बावजूद लास्ट में देखो तो वही का वही रह जाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चौथी है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी होता है तो वो कंकड़ पत्थर उस मिट्टी में बहुत अधिक होते हैं। तो कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, वो दिन भर कटु वचन ही बोलते हैं, उनके मुख से पत्थर ही निकलते हैं, और उसी में उनको खुशी होती है अपने वचनों से दूसरों को। बाबा कहता है जैसे मुरली में कि कभी किसी को अपने वचनों से श्रापित नहीं करना, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं उनके वचनों का बहुत महत्व होता है, बहुत, क्योंकि सभी श्रेष्ठ आत्मा है। लेकिन हम अगर अपने स्वभाव संस्कार के आधार पर दूसरों को अगर सारा दिन कटु वचन बोलते या टॉन्टिंग करते हैं, या फिर उनकी स्थिति डाउन हो ऐसे हम अगर वचन बोलते हैं, या किसी ने बहुत अच्छा काम किया लेकिन उसमें कुछ कमी कमजोरी निकालते हैं, तो उसका जो सारा उमंग उत्साह है वो सारा नीचे आ जाता है। तो ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए। तो ये एक स्वभाव है लैटेराइट मिट्टी का। फिर नेक्स्ट है दलदली मिट्टी, हल्की काली एवं दलदली मिट्टी। तो दलदल कैसे क्या होता है कि दलदल में पैर डालो वो फंस जाता है, और जितना निकलने का कोशिश करो उतना और उसमें फंसते जाते, निकल नहीं पाते हैं। तो ये स्वभाव ऐसा है कि किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपने में ही फंसाने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी प्रकार से दूसरों को मतलब प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, या और अपने में ही फंसाने की कोशिश करते हैं। दूसरा कोई निकलना भी चाहे तो उसको और प्रलोभन जैसे देते हैं और अपने में ही फंसा देते हैं। तो ये हो गई हल्की काली एवं दलदली मिट्टी। कितनी हो गई, पांच। फिर छठवी है क्षारयुक्त मिट्टी। क्षारयुक्त मिट्टी अर्थात नमक वाली। तो किसी का स्वभाव बहुत खारा होता है ना। ज्ञान में तो सब चलते हैं, लेकिन सभी के शेड से है सबके, किसी में कोई शेड होता है, कोई में किसी में कोई शेड होता है। पुरुषार्थ भी सब करते हैं, लेकिन हर एक के अपने संस्कार होते हैं, उस अनुसार वो चलते है। तो किसी का बहुत खारा स्वभाव होता है, वो हमेशा उनसे कभी भी आपको सुख नहीं मिलेगा। वो किसी न किसी प्रकार से आपको व्यवहार से, चाहे बोल से, चाहे किसी भी प्रकार से आपको दुख देते रहेंगे। तो वो हालांकि ये डिपेंड करता है आपके कर्मिक अकाउंट कितने हैं उस व्यक्ति के साथ। तो लेकिन उनका एक स्वभाव होता है, सभी को हम हमेशा दुखी देते रहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि किसी कोई लोग होते हैं कि उनसे कोई भी सेटिस्फाई नहीं होता है, बोलते ये तो ऐसे ही करते हैं। तो ये हो गया क्षारयुक्त मिट्टी। और सातवां है वनी मिट्टी। वन में जो होती है वन की मिट्टी। तो वन की मिट्टी में क्या होता है, वैसे देखो तो बहुत औषधियां होती है वनों में जो और कहीं पाई नहीं जाती है, लेकिन अधिकतर क्या होता है कांटे है। बाबा हमेशा कहता है जंगल जो है वो कांटे, जैसे ये दुनिया कांटों का जंगल है, वैसे जंगलों में हमेशा बहुत बड़े पशु होते हैं, उसमें कांटे भी होते हैं। तो वो जमीन में अधिकतर करके कांटे ही उगते हैं, काम की चीजें बहुत कम रहती है, बहुत थोड़ी रहती है, और वो भी बहुत अंदर जाके दिखाई देती है। तो ऐसे ही ये जो इस स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसमें विशेषता बहुत अच्छी होती है, कोई एक पर्टिकुलर विशेषता या एक दो विशेषता बहुत अच्छी होती है, लेकिन इन नॉर्मल में देखा जाए, इन जनरल में देखा जाए तो अधिकतर अवगुणी होते हैं। तो ये हो गई वन की मिट्टी। उपयोगी तो है, लेकिन उसका सदुपयोग कम और दुरुपयोग ज्यादा है। तो ये हो गई वनी मिट्टी। तो ये मिट्टी के सात प्रकार हो गए। तो अभी मिट्टी के बर्तन। सबसे पहला है देहाभिमान की मिट्टी का बर्तन। देहाभिमान का मिट्टी का बर्तन जो है वो उसका सबसे बड़ा बर्तन है ये। देहाभिमान में आने से ही आप मिट्टी के बर्तन बनते। नहीं वो नहीं, उसी उसी से बनता है सारे, ये सात प्रकार की मिट्टी है ना, उसी से सारे बर्तन बनते हैं। हाँ वो स्वभाव है, मिट्टी का वो स्वभाव बताया है। तो देहाभिमान की मिट्टी का जो बर्तन है वो सबसे बड़ा बर्तन है। इसमें इसी के कारण जो भी समस्या आती है, जो भी प्रॉब्लम आती है वो इसी के कारण आती है। तो ये दिन भर में हम देखते हैं कि ये देहाभिमान की मिट्टी का बर्तन कितने बार हम बनता है, कितने बार बिगड़ता है, टूटता रहता है, और बार बार हम उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने ज्ञान योग के द्वारा, लेकिन वो मिट्टी का बर्तन जल्दी बन नहीं पाता। क्योंकि एक बार अगर कुछ हो जाती है हमारे साथ तो हम उसको एकदम ठीक नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आवश्यकता किस चीज की है, देहाभिमान के बर्तन को टूटने न देने, या टूटा हुआ है तो जोड़ने के लिए हाँ कौन सा सीमेंट लगाने का है? व्हाइट सीमेंट कौन सा है? बिरला व्हाइट का है या कोई और है? ईश्वरीय मर्यादा और नियम और सोल कॉन्शियसनेस और शुभ भावना, शुभ कामना। इसके लिए बाबा ने बार बार कहा है कि अशरीरीपन का अभ्यास करो। जितना जितना अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे उतना हम देहाभिमान से परे जाएंगे, सोल कॉन्शियस स्टेज, जैसे हिना बेन ने बोला। तो इस बर्तन को टूटने नहीं देना है। इसके लिए पांच स्वरूपों का अभ्यास भी बहुत उपयोग में आता है। फिर दूसरा है कर्मेंद्रियों के बर्तन। तो ये कर्मेंद्रियों के टूटे बर्तन कैसे होते हैं, कैसे टूटते हैं कर्मेंद्रियों के बर्तन? धोखा दे देती है और विशेषताओं को नहीं देखती। देखिए कितने अच्छे अच्छे आंसर आ रहे, सबका चिंतन बहुत अच्छा होता है। तो ये जो कर्मेंद्रियों के बर्तन है वो बाबा ने जैसे कहा ना आज के मुरली में कि ये मकड़ियों का जैसे जाल है, जादू का जाल है उसमें। क्योंकि पहला बर्तन जो है देहाभिमान का बर्तन वो बहुत बड़ा बर्तन है, वो जब बर्तन आ जाता है तो सारे बर्तन अपने आप आ जाते हैं। तो ये कर्मेंद्रियों का बर्तन इस जाल में हम फंस जाते हैं, क्योंकि देहाभिमान है तो कर्मेंद्रियों के हम वशीभूत हो जाते हैं, हमारा उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। तो हम उसी और अपना कम्फर्ट लेवल ढूंढते हैं। तो जैसे बाबा ने कहा है आत्मा देखना है या विशेषताएं देखना है, लेकिन होता क्या है, हम अपने कंफर्ट के हिसाब से क्या होता है कि हमारा स्वार्थ देखते हैं, और अगर हमारा स्वार्थ नहीं पूरा होता है तो हम उसमें कमी कमजोरी देखते हैं या उसको उसकी बुराई करते हैं। तो ये कर्मेंद्रियों के बर्तन भी एक बहुत बड़ा मकड़ियों का जाल है। तो इसके लिए इसको अगर ठीक करना है तो हमें क्या करना है, बाबा की या तो सबसे अच्छा रेमेडी है, इसको अगर ठीक करना है तो हाँ कर्मेंद्रियों को शीतल करना, याद की हाँ सभा लगा ली है, राज दरबार लगाना है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने हमेशा हमने सुना है सभी ने कि बाबा राज दरबार लगाते थे रात को सोने के पहले। इसलिए हमारे यहाँ पे नियम भी है कि सबको बाबा को गुड नाइट करके सोना है, तो उस समय बाबा को चार्ट भी देना है और स्वयं को भी देखना है कि हमारे कर्मेंद्रियों ने कहाँ कहाँ हमें धोखा दिया है। इसके ऊपर सचिन भाई ने बहुत अच्छी क्लास भी कराई थी। तो कर्मेंद्रियों के एक टूटे हुए बर्तन है। तीसरा बर्तन है संबंध संपर्क। संबंध संपर्क का ये टूटे हुए बर्तन, इसको क्यों कहा गया टूटे हुए बर्तन? अच्छा है ना संबंध संपर्क बढ़ाना, तो ब्राह्मणों की सेवा करनी और आत्माओं की सेवा करनी है हमें, तो संबंध संपर्क तो होने चाहिए ना, रहना भी इसी दुनिया में है। हाँ अच्छी बात है ना, पॉजिटिव। लेकिन ये टूटे हुए बर्तन क्यों बन जाते, फिर मुंह हो जाता है, टकराते हैं और बर्तन बर्तन में फंस जाते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई। नहीं ये मिट्टी उस टाइम वो मिट्टी है ना, जरा थोड़ी पावरफुल बन जाती, टूटती ही नहीं है। उसको अच्छी अग्नि मिल जाती है ना, पक्के हो जाते बर्तन। तो ये है संबंध संपर्क के जो बर्तन है वो फंस जाते हैं एक दूसरे में, एक्चुअली खारापन आ जाता है, वो क्षारयुक्त मिट्टी हो जाती है तभी। तो एक है उसमें मतलब मतलब उसके ड्रॉबैक्स बहुत सारे हैं संबंध संपर्क के। एक तो या तो फंस जाते हैं एक दूसरे में, या बहुत ज्यादा टकराव में आ जाते हैं, है ना, या स्वार्थवश फिर रिलेशन बन जाते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, हमें रहना इसी दुनिया में है, रहना इन्हीं लोगों के साथ में है, सबकी सेवा भी करनी है, लेकिन होते हुए भी न्यारे रहना है, जितना आवश्यक है उतने ही संबंध संपर्क बनाने हैं। अननेसेसरी जो संबंध संपर्क बढ़ाते हैं, या अपने प्रेस्टीज इश्यू के लिए भी बहुत सारे लोग संबंध बढ़ाते हैं, बाकी उनसे फायदा कुछ भी होने वाला नहीं है। मान लो अगर कोई पोस्ट पे है तो उनसे जबरदस्ती संबंध संपर्क बढ़ाते हैं कि उनके साथ अगर हमारे रिलेशन है तो लोग हमें अच्छा समझेंगे, हमारा प्रेस्टीज बढ़ेगा, आगे पीछे घूमते हैं। भाइयों की कॉलर टाइट होती है, बहनों को तो कॉलर ही नहीं होती। सभी के नहीं होते। तो दूसरों के साथ संबंध संपर्क इसलिए नहीं बढ़ाने कि इससे हमारा प्रेस्टीज इश्यू बने। जैसे आजकल जो फेसबुक और व्हाट्सएप जो होते हैं ना, अननेसेसरीली ग्रुप्स बनाते हैं और सबको ऐड करते जाते हैं। आप कितना भी उसमें रिमूव, मतलब हम लोग निकलना चाहते हैं, लेफ्ट करते हैं ग्रुप, दोबारा से वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ऐसे बार बार परेशान करते हैं। तो उनको लगता है कि हम ग्रुप एडमिन हैं, हम लोगों को दूसरों को जोड़ते में ना बहुत बड़ा काम करते हैं, हालांकि वो बहुत व्यर्थ का काम है। लेकिन वो समझते हैं हम इसमें, और ये सेवा के कारण हम जो व्हाट्सएप यूज करते हैं, ऐसा जो एक बहुत अच्छा एक लेबल लगाते हैं ऊपर, लेकिन देखा जाए तो वही बातें इतनी अननेसेसरीली रिपीट हो जाती है कि वो देख के मेरा मूड खराब हो जाता है, इतने ज्यादा वो ग्रुप्स में वो आते। एक चीज 50 बार आती है। नहीं, वो जरूरी होता है, आजकल कारोबार में भी यूज होता है ना, मोबाइल ईमेल सब यूज होता है। फेसबुक, मुझे फेसबुक सबसे ज्यादा वेस्ट लगता है, क्योंकि उसमें अननेसेसरी लोगों को इनवाइट करते हैं, इनवाइट है फ्रेंड, किस लिए करना है इनवाइट, क्यों ग्रुप में जोड़ना है सबको, फिर वो हाँ रखने का ही नहीं होता है। फिर उसमें भी प्रेस्टीज समझते हैं कि हमारे इतने मतलब फ्रेंड्स हैं, या ट्विटर पे जैसे होते हैं इतने इसके फॉलोअर्स की संख्या इतनी बढ़ गई है, तो वो एक प्रेस्टीज इश्यू समझते हैं। तो ये अननेसेसरी संबंध संपर्क जो है वो नहीं बढ़ाने, ये टूटे हुए बर्तन है, तो उसमें इतना ही कांटेक्ट रखना है, इतने ही कनेक्शन रखने हैं जितना की आवश्यक है। अभी जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग मिलते हैं, तो यहाँ पे हमारा इतना ही कांटेक्ट है, इसके बाद हमारा किसी से कोई कांटेक्ट ही नहीं होता है, पर अच्छा है ना, सब मिलते हैं यहाँ, मिलते हैं तो बहुत प्यार से मिलते हैं, बाकी इसके बाद कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये है मर्यादित संबंध, मर्यादा के अनुसार संबंध संपर्क। इसका मतलब ये भी नहीं कि बाहर मिले तो स्माइल भी नहीं दो, ये भी नहीं होना चाहिए, वो हर चीज का एक बैलेंस रखना होता है। फिर नेक्स्ट है कौन सा हुआ अभी, संबंध संपर्क। फिर है पदार्थों का, पदार्थों में भी ये संबंध संपर्क और पदार्थ थोड़े मिलते जुलते हैं। इसमें भी बहुत ज्यादा हम लोग अटक जाते हैं, मतलब कंफर्ट जोन भी ढूंढते हैं इसमें, क्योंकि साधन जितने हैं उतने कम पड़ते हैं। जैसे भी जी वस्तु वस्तु चीज वैभव, मतलब जो काम बाबा जैसे बोलता है ना कि दो रोटी में भी आपका भोजन हो जाता है, दो मतलब दो रोटी चार रोटी जिसका भी जो भोजन है उसमें भी होता है, लेकिन 10 चीजें बना बना के खाने का तो ये भी उसमें एक लालच हो गई है। तो या तो फिर अच्छी चीज हमारे पास जो जैसे घड़ी है, मान लो घड़ी से हमको नॉर्मल घड़ी है तो भी ठीक है, अच्छी घड़ी पहननी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि एक टाइटन की घड़ी है तो हमको रोलेक्स की घड़ी चाहिए, जरूरत नहीं है उसको दिखाने से, कोई हमारे पास ज्यादा टाइम हो जाता है ऐसा नहीं है, स्पेयर टाइम बचता है ऐसा भी नहीं है, या हमारा बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है ऐसा भी नहीं है। हाँ, लोगों के बीच में प्रेस्टीज इश्यू हो सकता है, लेकिन ये भी हमें और माया में अंदर अंदर खींचता है, और वो चीजें अगर हमारे पास नहीं होती है तो फिर हमें उसका बहुत अधिक दुख भी होता है। हाँ, अच्छी चीज होती है, इसलिए बाबा बोलते हैं ना बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनने के, नहीं तो आपको अभिमान आ जाएगा, चार लोग पूछेंगे फिर हमें बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा अच्छा, मेरे कपड़े अच्छे या मेरी घड़ी अच्छी, मैं अच्छी दिख रही हूँ, और अगर वो नहीं है, किसी ने उसकी तारीफ नहीं की तो उसका दुख भी बहुत हो गया। तो ये संबंध, ये पदार्थों के भी एक टूटे हुए बर्तन है। नेक्स्ट है कौन सा बर्तन हो सकता है, और एक कौन सा बर्तन है,
तो कोई लेते हैं तो फिर चाय कपड़े सब गिर के बर्तन की बात कर रही है।
संबंध संपर्क में आ जाता है, ये टूट पुराने स्वभाव संस्कार के बर्तन, टूटे हुए बर्तन। तो ये जैसे घर में क्या होता है कि हम लोग कुछ पुराने बर्तन हो जाते हैं ना, तो उसको नहीं बेचते नहीं है, जमा करके रखते हैं, कहीं कभी काम में आएंगे करके, ये हमें काम में आएंगे करके, नहीं अभी कभी समय कौन सा है क्या पता, ऐसे करते करते बहुत सारे चीजें हम लोग घर में ऐसे रख देते हैं, और जो चीजें नहीं रखनी वो सारी रख देते हैं, और फिर क्या होता है कचरा जमा हो जाता है, और कुछ और ढूंढने जाते हैं तो वो चीजें तो मिलती नहीं, भलते ही जो कुछ और बर्तन होते हैं वो मिलते हैं, या फिर देखते अरे ये भी पड़ा है ये भी पड़ा है, हमें पता ही नहीं होता है कि ये सारी चीजें हमारे पास पड़ी भी है, क्योंकि काफी समय से संचय करते हैं उसका, तो बाद में पता भी नहीं होता है, लेकिन उससे गंदगी और फैलती है। तो ऐसे हमारे पुराने स्वभाव संस्कार है, तो ये स्वभाव संस्कार कहाँ कहाँ छुपे हुए होते हैं वो पता ही नहीं चलता। हम जैसे बाबा बोलते हैं ना कभी कभी कि आप जैसे जैसे क्रोध है, क्रोध वैसे नहीं करते हैं लेकिन रोब को है वो अपने पास रख देते, तो कहते हैं कि कभी कभी आंख भी दिखानी पड़ती, बताना पड़ता नहीं तो लोग मानते ही नहीं, तो हमारा कोई सुनता नहीं है। तो ऐसे प्रकार के पुराने जो स्वभाव संस्कार के जो बर्तन है वो भी हम स्पेयर में रख देते हैं, लेकिन और उसका कभी जब जरूरत पड़ती तो यूज करते हैं, लेकिन वो जो संस्कार है वो रखने से हमारे पास कितनी सारी धूल मिट्टी या कितने सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं इसका हमें ध्यान ही नहीं रहता है, और फिर उससे दुखी होते रहते हैं। फिर है झरमुई झगमुई के बर्तन और अपेक्षाओं के बर्तन। झरमुई झगमुई क्या, एक तो होता है परचिंतन प्रदर्शन, लेकिन दूसरा होता है कि झरमुई झगमुई उससे भी आगे की स्टेज। तो जैसे झरमुई झगमुई मतलब एक दूसरे की बातें करना, परचिंतन प्रदर्शन उसमें आ ही जाता है, लेकिन अननेसेसरीली। एक होता है कि भाई मुझे आपसे प्रॉब्लम है तो मैं किसी को बोल दूं कि मुझे इसने ऐसे ऐसे किया। दूसरा है कि जहां जरूरत ही नहीं वहां उस व्यक्ति के बारे में, अरे आपको पता है फलाने का ऐसा ऐसा हुआ है या ये बात हुई है उसके साथ, वो ऐसा है, तो जिसका कोई कनेक्शन ही नहीं है वो व्यक्ति के साथ, उसके पास भी उस व्यक्ति के बारे में सारी चर्चा करने का, तो उसमें उससे क्या होता है, जिस व्यक्ति को उस व्यक्ति के बारे में पता ही नहीं उसके लिए उसके बारे में मन में भी इम्प्रेशन खराब हो जाता है, और वो व्यक्ति उसके बारे में उसी प्रकार के बारे में सोचता है। मान लो कभी वो व्यक्ति अच्छा भी होगा जिसके बारे में बुराई की है, लेकिन वो अगर कभी मिला होगा या 10 लोग उसको मान देते हुए दिख रहे हैं तो सोच अरे ये तो ऐसा है, ये लोग को पता नहीं है ये कैसा व्यक्ति है, ये बिना ये लोग तो अंधेरे में है, इसको तो ये जानते ही नहीं है, और ये इस प्रकार से उसके मतलब बातें फैलाना होता है। दूसरा होता है अपेक्षाओं के अपेक्षा एक्सपेक्टेशन, इसके पर तो बहुत बार चर्चा हुई है। हमारी अगर अपेक्षाएं हम पूरे नहीं होते हैं तो हम दुखी होते हैं, हमें कोई मान नहीं देता है, हमें कोई पूछता नहीं है, तो या हम किसी को अच्छा मानते हैं, हमारा आदर्श मानते हैं, या कुछ भी होता है, स्पेशली जो होता है कि आइडियल हम जिसको मानते हैं या जिसके लिए बहुत रिस्पेक्ट होता है, उसने अगर हमारे साथ अगर व्यवहार अच्छा नहीं किया तो हम बहुत ज्यादा हर्ट हो जाते हैं कि देखो हम तो इनको इतना अच्छा मानते हैं और ये देखो तो नजदीक जाके देखो तो ये ऐसे है, तो वो उस व्यक्ति की 100 अच्छाइयां होती है लेकिन एक हमें केवल मान नहीं दिया, या हो सकता है उसके लिए उस टाइम कोई भी मतलब वो बिजी हो या नहीं इच्छा हुई होगी उनको आपको इतना ज्यादा तवज्जो देने की इम्पोर्टेंस देने की, तो नहीं दिया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उनके मन में आपके लिए खराब भावना है, ये भी नहीं होता है, लेकिन ये अपेक्षाओं के बर्तन भी जो है टूटे हुए बर्तन वो बहुत अधिक नुकसानदेह होते हैं। तो जैसे हम लोग भी फिर छुई में हो जाते, मतलब हम बहुत उदास हो जाते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हुई, हमने ऐसे किया इन लोगों ने, तो फिर हमें किसी भी चीज में फिर इंटरेस्ट नहीं आता है, तो ये उमंग उत्साह कम हो जाता है, छुए में हो जाते हैं, किसी से बात करने का भी फिर मन नहीं होता है। फिर लास्ट में है बाहरी दिखावे के बर्तन। बाहरी दिखावे के बर्तन जो है वो केवल दूसरों को शो ऑफ करने के लिए, हालांकि इसमें मिलता कुछ नहीं, जैसे होता ना थोथा चना बाजे घना, ऐसे है ना, हाँ थोथा चना या बाजे घना, मतलब बहुत ज्यादा आवाज करता है वो, जबकि होता कुछ भी नहीं है उसमें। जो भरा हुआ व्यक्ति होता है वो हमेशा साइलेंट रहता है, घड़ा भी जो होता है जो भरा हुआ है वो छलकेगा नहीं, लेकिन वो आधा जो होता है ना वो बहुत ज्यादा छलकता है, अध जल गगरी छलकत भारी है ना, ऐसा कुछ, हाँ छलकत जाए, एम्प्टी वेसल मिक्स, ये ज्यादा इजी है, एम्प्टी वेसल मिक्स मच नॉइज। तो ये जो बाहरी मना कहीं भी खड़े हैं तो हम क्या करते हैं, हमारा हमको उस जैसे कोई मोबाइल की बात करे, दो लोग बात करें या चार लोग बात कर रहे हैं उसमें हम जाते हैं तो क्या हम उससे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन चाहे जो है या दूसरे कोई मोबाइल कंपनी का दूसरा आया है तो उसके बारे में बहुत अधिक चर्चा करते हैं। मैंने ये बहुत देखा है, मुझे कभी कभी इरिटेशन हो जाता है। मैं सोचती थी ये क्या करते हैं ऐसा, गाड़ियों के बारे में जितनी गाड़ियां हैं उनके सारे फीचर्स बता देंगे आपको, क्योंकि ये गाड़ी में ऐसा है, इसका इतना माइलेज चलता है, जिसका कोई मतलब अननेसेसरी है, लेकिन शो ऑफ कर इसलिए करते हैं कि हमें बहुत ज्यादा लोग महान माने, हमें बहुत नॉलेज है ये सब उनको होता था, लेकिन बाद में छोड़ दिया, ये बहुत सारा झेला है मैंने लेकिन फिर छोड़ दिया कि इनको मतलब हम बोल भी नहीं सकते उनको कि आप ऐसा नहीं करो, फिर क्या है सुनना भी है हमें, वहां से हम निकल भी नहीं सकते, तो फिर जहाँ नहीं सिखा सकते वहां, जहाँ नहीं बता सकते वहां बताना भी नहीं होता है, सिखाना या बताना उनको चाहिए जिसके सामने आने की कैपेसिटी हो, तो उसका अहम अगर हर्ट होता है तो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बाहरी दिखावे के टूटे हुए बर्तन, तो इतने सारे बर्तन होते हैं। फिर बाबा ने कही सात प्रकार के बर्तन हो गए। फिर बाबा ने कहा है कि जहाँ टूटे हुए बर्तन है वहां मच्छर पैदा होते हैं, तो मच्छरों की क्या विशेषता है काटते रहते हैं और रात को जागते दिन में सोते हैं, नहीं दिन में भी काटते हैं मच्छर, ऐसा नहीं है सोते हुए को काटते हैं, अंधेरे में अंधेरी जगह रहते हैं, गीत गाते हैं हाँ कोई कोई चुपके से नहीं गाते। तो मच्छर जो है उससे बहुत सारे रोग होते हैं ना, दिखने में बहुत छोटा सा होता है मच्छर, लेकिन मनुष्यों को अपनी जान गंवानी पड़ती है, जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये अभी अभी निकले, पहले मलेरिया चलता था, मलेरिया का फीवर अगर ब्रेन में चला जाए तो व्यक्ति वहीं पूरा हो जाता है। तो दिखने के लिए ये बहुत छोटे छोटे है लेकिन बहुत बड़ा नुकसान करते है। ऐसे ही जो हमारे अंदर जो मच्छर छुपे हुए ये सब देह जो मिट्टी के बर्तन है टूटे हुए उसके कारण जो मच्छर पैदा हुए हैं वो हमें बहुत नुकसान करते हैं। तो सबसे पहला मच्छर है व्यर्थ संकल्प और विकल्प के मच्छर, है ना। व्यर्थ संकल्प तो ऐसे है एकदम अनकंट्रोलेबल है, उसका कंट्रोल ही नहीं होता है, इतना मतलब वो नेचर जैसे बन गया है ना, कितना भी बार बार हम अपने आप को सम्मान दे, कितना भी बार बार योग में भी बैठो, कितना मतलब कुछ कितना भी आप ट्राई करो कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है व्यर्थ संकल्प, तो ये भटका देते हैं या नेगेटिव है। मान लो किसी के प्रति हमारा अगर नेगेटिव चल रहा है तो वो जल्दी स्टॉप ही नहीं होता है, क्योंकि हमारे साथ हुआ होता है ऐसा, नो डाउट। वो बात अलग है कि हमारा पिछले जन्म का कुछ ऐसा कार्मिक अकाउंट है या कुछ और भी बात हो सकती है, या हमारा कुछ व्यवहार उसको नहीं पटता हुआ तो वो कुछ ना कुछ बात ऐसी हो जाती है कि हमारा निगेटिव चलना शुरू हो जाता है, और निगेटिव जब चलता है तो फुल स्टॉप नहीं लगता उसको, बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। वो जैसे मच्छर है ना, जाता ही नहीं, जैसे उसको ऐसे ऐसे करते रहो लेकिन वो फिर से गू गू करता रहता है, तो वो ऐसे ही मच्छर है, व्यर्थ और निगेटिव का एक मच्छर है, तो जो बार बार हमें काटता है, उससे हमारी स्टेज क्या होती है, डाउन हो जाती है। दूसरा है सेंसिटिव नेचर के मच्छर। सेंसिटिव नेचर का जो मच्छर होता है, जो सेंसिटिव नेचर वाले होते हैं उनको क्या होता है कि जरा भी अगर कोई कुछ कहे, अच्छे से भी कहे तो भी उनको वो तुरंत बात बुरी लग जाती है जी, चोर नहीं वाली नहीं। सेंसिटिव नेचर और भी कुछ और होता है, मतलब जैसे दो व्यक्ति अगर बात कर रहे हैं, नहीं कहना चाहिए लेकिन वो सामने वाले की कैपेसिटी देख सेंसिटिव नेचर के मच्छर। अगर दो लोग बात कर रहे हैं, मान लो उनको हमारे सामने वो बात नहीं करनी है, किसी भी बात हो सकती है, हम जाते हैं तो वो जस्ट स्माइल देंगे, हाय हेलो कर देंगे हमें, या चुप हो जाएंगे या कुछ और बात करेंगे, तो हमें क्या लगता है कि वो हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं। तो ये बात काफी बार यहाँ चर्चा हो चुकी है। तो ये जो होता है सेंसिटिव मच्छर, जैसे वो कान में भू भू करता ही रहता है और वो मतलब उसके दिमाग में वो बात ऐसे चली जाती है ना कि वो निकलती नहीं बात में।
लेकिन सेंसिटिव मच्छर जब आने लगते हैं उससे पहले ही बात चेंज करनी चाहिए।
तो पता नहीं होता, जैसे मान लो मैं और आप यहाँ बात करे, बहुत स्लो बात करे क्योंकि हमें यहाँ जोर से बात नहीं करना, स्लो धीरे बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोई एकदम से आ जाए। नहीं, अभी तक धीरे बात कर रहे थे, फिर एकदम से चेंज करेंगे तो वो उनको पता तो चलता है ना, कोई बुद्धू नहीं होते दूसरे लोग। दूसरे लोगों को कभी बुद्धू नहीं समझना होता है, सब होशियार होते हैं। ये बात चेंज कर देंगे तो मौका मिलता है तो बात चेंज करो बात करेगा, लेकिन कभी कभी मौका ही नहीं मिलता, अचानक से कोई एकदम ऐसे प्रकट हो जाता है व्यक्ति, तो तब नहीं चेंज कर सकते है। फिर तीसरा है कामनाओं के मच्छर। कामनाओं के मच्छर जैसे पदार्थ, और जैसे इसमें बताया था कि जितने जितनी कामनाएं जो होती है कि एक पूरी होगी दूसरी पैदा हो जाती है, दूसरी होगी इच्छा है कामनाएं। वो बाबा जैसे कहता है कि शुभ भावना शुभ कामना रखो, लेकिन वो शुभ कामना नहीं रहती, लेकिन अपने ही स्वार्थ की जो कामना होती है वो ये एक होता है कि पॉजिटिव वे में, मतलब लोग कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि कभी भी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, हमेशा कुछ और पाने की इच्छा रखनी चाहिए। लेकिन जैसे पढ़ाई में मान लो अगर 90% मिल गए तो और अच्छे पढ़ाई करके आप 95 के लिए प्रयास करो, लेकिन वो पॉजिटिव वे में ठीक है। लेकिन अगर कंपटीशन और कंपटीशन के बेसिस पे आप करेंगे कि उसको मिला है तो मुझे मिले, वो मिलने के बाद फिर लगता नहीं और कुछ मिलना चाहिए, तो ये कामनाओं के जो मच्छर है वो भी आपको शांत रहने नहीं देते, स्वस्थ रहने नहीं देते है। फिर है चिंता के मच्छर। चिंता के जो मच्छर है वो भी मनुष्य को बहुत काटते हैं। जैसे कहते हैं कि चिंता ये जैसे चिता है, अंदर ही अंदर वो जलाती रहती है, ऐसे ही ये किसी बात की अगर चिंता लग गई है तो वो बार बार वो मच्छर आपको काटते रहेंगे, आपको स्वस्थ नहीं शांत नहीं रहने देंगे, बार बार उसी के बारे में हम चिंतन करते रहेंगे। फिर है चिंताओं के मच्छर। चिंता तो किसी भी प्रकार की होती है, हेल्थ की चिंता होती है, किसी को भविष्य की चिंता होती है, किसी भी प्रकार की चिंता हो सकती है, किसी का मतलब किसी से रिलेशन बिगड़ जाते हैं उसकी भी बहुत मतलब चिंता हो जाती है कि कैसे किया जाए जी। हाँ, पैसे की चिंता होती है, घरों में तो देखो ना कितना सबको मेहनत करनी पड़ती है, परिवार को संभालना कोई इजी बात नहीं है, तो उसकी भी चिंता होती है। कितने मच्छर हो गए, गिनती नहीं किया, 4 मच्छर हो गए, ज्यादा हो गए, मच्छर मच्छर है ना, 7 प्रकार के मच्छर है मेरे पास। फिर है क्रोध के मच्छर नहीं होते, वो क्रोध आ गया उसमें मिट्टी में आ गया। फिर है इनसिक्योरिटी की जो फीलिंग होती है ना, उसके भी बहुत मच्छर होते हैं। जब हम कहीं से किसी भी बात में किसी के साथ असुरक्षित हो जाते हैं तो हमें उसके मच्छर भी बहुत काटते हैं। फिर इसके बाद है मच्छरों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, दवाई लगाते हैं, रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट बोलते हैं उसको, वो हाँ गुड नाइट लगाते हैं, ओडोमास लगाते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, मच्छर की कॉइल लगाते हैं, और वो बैट होती है ना उससे सारा दिन मच्छर मारते रहते हैं, फैन चलाते हैं, हाँ वो हो गया ना, कछुआ छाप अगरबत्ती लगाते मच्छरदानी, ये सब चीजें करते हैं हम लोग इसलिए मच्छर से बचने के लिए। तो इसके ऊपर रेमेडी क्या है वो देखते हैं। तो फर्स्ट है आर फॉर रेट्रोस्पेक्शन। तो जैसे यहाँ पे तो बहुत बार चर्चा हो चुकी है रेट्रोस्पेक्शन के बारे में, कि हमारे हम जो भी कुछ करते हैं उसका एक बार दिन में रेट्रोस्पेक्शन करना है, सिंहावलोकन करना है। जैसे जीवन का बाबा जैसे बोलते हैं ना कि जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो आप अपनी जीवन कहानी लिखो, एक बार पूरी जीवन कहानी सच्चे दिल से जीवन कहानी लिखो कि मैंने बचपन से लेके अभी तक क्या क्या हुआ है। तो वो जीवन कहानी लिखने का किस लिए लिखना होता है, एक तो सच्चाई सफाई से बाबा को सब कुछ हमारे बारे में बताना, और दूसरा है बताते हैं तो एक तो बाबा से शक्ति भी मिलती है, और दूसरा हमारा उसके लिए प्लानिंग करना कि हमें क्या क्या करना है, कि आगे से इस सब बातों से बचने के लिए क्या करना है। और ऐसे ही जैसे डॉक्टर सचिन ने बताया था कि रोज शाम को आप योग करने के पहले एक बार पूरे दिन का आप वो चार्ट चेक करो कि क्या क्या किया हमने, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छी क्लास की थी कि प्री अमृत वेला क्या करना है, अमृत वेले क्या करना है, पोस्ट अमृत वेला क्या करना है। तो उसमें भी थोड़ी देर में भी वो रेट्रोस्पेक्शन हमारा हो सकता है छोटे छोटे पीरियड में, या तो फिर शाम को करना है या तो रात को, तो हम सब लोग चार्ट देते ही है बाबा को, वो भी होता है। तो एक होता है रेट्रोस्पेक्शन, दूसरा होता है ई फॉर इजी नेचर, हमें अपने स्वभाव को सरल बनाना है। जितना हम अपने स्वभाव को सरल बनाएंगे उतना और बातों से और प्रॉब्लम से बच जाएंगे, जो जितने मच्छर काटते हैं ना सेंसिटिव नेचर की वजह से, तो उन मच्छरों से हम दूर हो जाएंगे। क्योंकि मान लो अगर आपको कोई बात कोई कह देता है, कोई कुछ बोल ही देता है, मान लो कटु वचन बोल देता है या इंसल्ट कर देता है, कभी कभी बिना बोले भी लोग इंसल्ट करते हैं, बात ही नहीं करेंगे आपसे या निग्लेक्ट करेंगे, तो वो क्या होता है, आपका इंसल्ट होता है ना। तो लेकिन उसको लेट गो करना है, ठीक है, नहीं बोला तो उसके बोलने से हमारा कुछ बहुत अच्छा होता है ऐसा नहीं है, नहीं बोला तो कोई बात नहीं, निग्लेक्ट किया तो कोई बात नहीं जी, हाँ समझना ही नहीं इंसल्ट, उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देना वो व्यक्ति को, उसको व्यर्थ समझना अपने लिए, ही इज नथिंग फॉर मी, ऐसे समझना। हाँ नहीं नहीं, कभी कभी नौ लोग भी ऐसे, 10 में से 9 लोग भी ऐसे मिलते हैं जो अच्छा नहीं बोलते अपने साथ। एक व्यक्ति को अच्छा मिलता है ठीक है, वो जो अच्छा है उसी के साथ चल, मतलब उसी में सेटिस्फाई रहने का। हाँ जैसे मान लो कभी कोई बात आपको, जैसे प्रोग्राम है कोई, मान लो आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है कुछ, ठीक है आप भाषण करो या कोई जाओ स्टेज पे जाओ ये करो वो करो, तो हमें अच्छा लगता है। अगर मान लो नहीं दिया, दूसरा बैकग्राउंड का वर्क दे दिया, तो उसमें भी सेटिस्फाई रहना है कि नहीं ठीक है ये भी सेवा है, वो भी वो सेवा है तो ये भी सेवा है। जैसे बाबा कहते हैं ना बर्तन मांजने की भी एक सेवा है, उसमें भी आप बहुत सी सेवा कर सकते हैं। बाबा को सभी ने देखा ना, बाबा उपले बना रहे थे, लेकिन कितनी उसमें भावना बाबा की कितनी ऊंची थी, स्थिति इतनी श्रेष्ठ थी कि दूसरा देखने वाला भी उससे मतलब सीखने को मिला उसको कि क्या करना है, कि इसे बाबा इतने बड़े होते भी छोटा काम कर रहे, तो बर्तन जैसे मांज रहे या पीछे स्टेज के पीछे काम कर रहे, तो वो कोई काम छोटा नहीं है। अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है, हमारी वृत्ति श्रेष्ठ है, शुभ स्टेज अच्छी है, तो उसमें से भी सेवा हो जाती है। तो कभी लेट गो करना है, कभी किसी को अवॉइड करना है, कभी किसी को छोड़ देना है, तो ये हमारा इजी नेचर होना चाहिए। एम फॉर मीठा स्वभाव, हमारा स्वभाव हमें बहुत मीठा बनाना है। चाहे कोई मतलब कोई कुछ भी करता है, ऐसा नहीं कि हम परफेक्ट बने हैं, लेकिन जहां तक हो सके अपना पुरुषार्थ यही करना है कि स्वभाव मीठा बनाना है। कोई हमें पूछे नहीं पूछे, कोई हमें कैसे भी बोले, लेकिन हमें अपना प्रयास यही रहना चाहिए कि हमें उसके साथ अच्छे से पेश आना है। बाबा ने बैलेंस करने के लिए सिखाया है, वो अपना समय देख के चलना है। मीठा बनना ऐसा ये भी नहीं कि उसको हावी होने देना है, लेकिन मीठा स्वभाव रखना है।
इतना मीठा बनता है, पीछे बहुत प्लानिंग करता है,
वो भी नहीं होना चाहिए।
मीठा इतना बनेगा कि अपने को लगेगा कि जैसा सुखचिंद का कोई है
नहीं। तो वो हरे को अपना देखना है कि किस तरह से रहना है। फिर फोर्थ है ई फॉर इलेक्ट्रिफाइंग स्टेज, हमारे योग किस बताएंगे, करंट वाली स्टेज होनी चाहिए, एकदम करंट लगना चाहिए। अगर हमारी ऐसी स्टेज होती है तो जैसे मच्छर के लिए नहीं वो बैट यूज करते हैं ना, वो फट से मर जाते हैं उसमें, ऐसा करते ही वो बटन दबाते ही, तो हमारी स्टेज भी मतलब योग की स्टेज इतनी अच्छी हो। बाबा जैसे बोलता है कि हम आपसे ऐसी करंट निकले जो विकार जो है वो जल जाए, है ना। तो ये जो मच्छर है इसे छोटे छोटे उनको हमारी अपनी स्टेज से इलेक्ट्रिफाइंग स्टेज से मार देना है। फिर है डी फॉर डिटैच ऑब्जर्वर, तो हमें साक्षी दृष्टा का बहुत अधिक अभ्यास करना है, क्योंकि ये सारी बातें तो होती रहेगी, जितना हम साक्षी रहेंगे उतना और सभी बातों से परे, बातों के प्रभाव से परे होंगे, ना प्रभावित होंगे ना प्रभावित करेंगे, तो ये सब बातों से परे हो जाएंगे। फिर है वाई फॉर युक्ति युक्त, ये जो अभी जो बातें चली युक्ति युक्त भी चलना है। इसका मतलब ये भी नहीं जैसे बाबा बोलते हैं ना मतलब की बात निकाल देते, बाबा ने कहा है कि हाँ आपको अगर खाने को नहीं मिलता तो आप बाहर का ब्रेड खा सकते हो, तो जब खाने को नहीं मिलता है तब खाने के लिए बाबा ने कहा, ऐसा नहीं कि रोज ही खाने के लिए खाना है करके। तो युक्ति युक्त भी चलना है कि समय कैसी परिस्थिति है उस हिसाब से अपने को वहाँ से मतलब कोई भी परिस्थिति अगर आती है हमारे पर तो वहाँ से बच निकलना है, उसके प्रभाव में नहीं आना है। और फिर लास्ट वाला है एस, रेमेडी है, लेकिन रेमेडीज का रेमेडीज अगर बोलेंगे तो ईएस आता है, लेकिन यहाँ सिर्फ एस लिया है। तो लास्ट वाला है एस, एस एस पर सेल्फ सॉरेंटी या सेल्फ कंट्रोल। तो जितना हम दावे ने जैसे आज के मूल्य चलाए दास और अधिकारी आत्मा के लक्षण है ना, तो जितना हम सेल्फ कंट्रोल करेंगे स्वराज अधिकारी बनेंगे तो हमारे न कोई मिट्टी के बर्तन आ जाएंगे, न ही हमें कोई भी प्रकार के मच्छर काटेंगे। तो हमें सेल्फ सॉवरेन बनना है, स्वराज्य अधिकारी बनना है। तो सात प्रकार की मिट्टी देखी हमने, सात प्रकार की मिट्टी के बर्तन देखे, सात प्रकार के मच्छर और सात प्रकार की इसके ऊपर रेमेडी। ओम शांति।